नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की एक दिवसीय यात्रा पर कीव पहुंचे। श्री मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और अमरीका स्वाभाविक सहयोगी हैं, दोनों देशों का मजबूत साझेदार बनना तय। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इसरो का न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान। सरकार ने स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए 156 निश्चित खुराक संयोजन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना स्वीकार किया। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद यूक्रेन के कीव पहुंचे। श्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में श्री मोदी ने कीव के एवी फोमिन गार्डन में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के लिए प्रस्थान से पहले श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए अब तक हुई बातचीत को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत का लक्ष्य यूक्रेन में जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान तलाश करना है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता लौटेगी। इससे पहले कल श्री मोदी ने वारसो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत में कहा था कि वे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं।
यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं।
1992 में यूक्रेन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा है। श्री मोदी और श्री जेलेंस्की आर्थिक से लेकर व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। इनमें कृषि, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा, औषधि, रक्षा, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा यूक्रेन में जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संघर्ष समाप्त करने में सहायक होगी। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में कहा कि इस यात्रा से यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और अमरीका स्वाभाविक सहयोगी हैं और उनका मजबूत साझेदार बनना तय है। अमरीका की आधिकारिक यात्रा के पहले दिन श्री सिंह ने वाशिंगटन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये देखकर प्रसन्नता होती है कि भारतीय समुदाय अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए है और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है।
भारत और अमरीका का जहां तक सवाल है, हम लोग नेचर ले बड़े पुराने रिश्ते हैं लोग, और उसी डेस्टिनी के अनुरूप ही भारत और अमरीका के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि भारत और अमरीका दोनों के मिलाकर वह ताकत है कि भारत में दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी तीनों यदि लाई जा सकती है तो भारत और अमरीका बेहतर स्थान पर रह सकते हैं।
रक्षा मंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भारत और अमरीका ने आपूर्ति व्यवस्था, सुरक्षा और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आपूर्ति व्यवस्था सुरक्षा दस्तावेज पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने कतर में गुरु ग्रंथ साहिब को जब्त करने का मामला पहले ही वहां के अधिकारियों के साथ उठाया है और दोहा में इससे संबंधित घटनाओं की पूरी जानकारी भारतीय दूतावास ने सिख समुदाय को प्रदान की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने कतर के अधिकारियों द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को जब्त करने और सिख समुदाय द्वारा ग्रंथ को मुक्त कराने की मांग संबंधी खबरों का संज्ञान लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय दूतावास स्थानीय कानून के दायरे में हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। आज नई दिल्ली में देश के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने ये बात कही।
हमारे निष्ठावान वैज्ञानिकों ने न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके भारत के स्पेस प्रोग्राम को विश्व के श्रेष्ठतम स्पेस प्रोग्राम में स्थान दिलाया है। इसके लिए वे सराहने के पात्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रहेगी तथा हम उत्कृष्टता के नए मानक स्थापन करते रहेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति से स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और कई अन्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि संसाधनों और ज्ञान से ये पहले वंचित था।
60-70 वर्ष तक हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र साधनों के अभाव तले काम करता रहा। मोदी जी ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए इसको उन बंदिशों से आजाद किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अनुमति दी और उसके प्रमाण आपके सामने हैं। देखते ही देखते 3-4 वर्ष के भीतर जहां 1-2 स्टार्टअप्स हुआ करते थे स्पेस सेक्टर में, आज बढ़कर के उनकी संख्या लगभग 300 हो गई। मात्र 7-8 महीने में पहली अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2023 में 1,000 करोड़ रूपये से अधिक प्राइवेट वहां निवेश हुआ।
इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस वर्ष देशभर में मनाया जा रहा है। इसमें सभी विभाग, मंत्रालय, शिक्षण संस्थान, वैज्ञानिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन और आम नागरिक भाग ले रहे हैं।
इट वॉज ऑन 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 मेड द हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द मून, क्रिएटिंग ए नेवर बिफोर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पेस प्रोग्राम ऑफ दिस नेशन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही मेड द अनाउंसमेंट ऑफ 23 अगस्त टू बी द नेशनल स्पेस डे। दिस ईयर द नेशनल स्पेस डे इज बींग सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एंड देर इज लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म दैट इज विजिबल।
इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने इसरो के रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री धनखड़ ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये दिन आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति की याद दिलाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है। सरकार ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि एक समीक्षा के बाद पाया गया कि इनसे स्वास्थ्य को खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इन 156 दवाओं में निश्चित मात्रा में खुराक संयोजन तर्कहीन है। मंत्रालय ने कहा कि इन दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को खतरा होने की संभावना है, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डीटीएबी की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन पर राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार आईईसी अभियान शुरू किया है। 10 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों में केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव का दौरा करेंगे। श्री मोदी वहां 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे। इस दौरान वे उन लखपति दीदियों से भी बातचीत करेंगे जो सालाना 1 लाख रूपये या इससे अधिक कमा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रूपये का एक रिवॉल्विंग फंड सामुदायिक निवेश कोष जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रूपये का बैंक ऋण भी जारी करेंगे। भारी बारिश के अनुमान के बावजूद बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के किसी भी हिस्से से फिलहाल वर्षा की कोई खबर नहीं है। बाढ़ प्रभावित गोमती नदी और त्रिपुरा के दक्षिणी इलाकों में बचाव अभियान जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ मानिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जानकारी दी कि केंद्र ने त्रिपुरा में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए SDRF से केंद्रीय हिस्से के रूप में 40 करोड़ की राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस बीच मूसलाधार बारिश के कारण असम अगरतला NH-8 पर 18 मुरा पहाड़ियों पर एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण खोवाई जिला मजिस्ट्रेट को वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। आज प्रभावित स्थल का दौरा करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों ने भारी बारिश के साथ क्षेत्र में भूकंप के प्रभाव की आशंका जताई है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्र द्वारा तैनात 11 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें, सेना की 3 टुकड़ियां और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में देर रात हुए भूस्खलन के मलबे में दबकर 4 नेपाली मजदूरों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही राज्य आपदा मोचन बल की टीम मौके पर पहुंची और शवों को मलबे से बाहर निकाला। भूस्खलन के कारण चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए अवरूद्ध है। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनना स्वीकार कर लिया है। वे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। सुश्री हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन लोगों को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की। अपने भाषण में सुश्री हैरिस ने कहा कि वे अमरीका के लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगी और देश के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगी। नेपाल में गंडकी प्रांत के तनहुन जिले में भारत में पंजीकृत एक यात्री बस मर्सियांगडी नदी में गिर गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह हादसा पृथ्वीराज राजमार्ग पर हुआ। तनहुन के पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार राय के अनुसार पोखरा से काठमांडू जा रही बस नदी में गिर गई। बस में भारतीय पर्यटक सवार थे। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। आकाशवाणी की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती और अपर महानिदेशक एल मधुनाग ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में पौधे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल सोमवार को यूएस ओपन के पहले दौर में नीदरलैंड्स के टेलोन ग्रीक्सपुर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। दुनिया के 72वें रैंक के खिलाड़ी सुमित नागल ने जुलाई में यूएस ओपन के मुख्य ड्रॉ में अपनी जगह पक्की की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की एक दिवसीय यात्रा पर किए पहुंचे। श्री मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और अमरीका स्वाभाविक सहयोगी हैं, दोनों देशों का मजबूत साझेदार बनना तय। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इसरो का न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान। सरकार ने स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए 156 निश्चित खुराक संयोजन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। और अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना स्वीकार किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।